दो साल बाद दोपहर से हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही थी। शाम होते ही झमाझम बरसात शुरू हो गई। किचन में रात का खाना बनाती राधिका की बेचैन निगाहें रह रहकर दरवाजे की ओर जा रही थीं और उन बेकरार निगाहों को बड़ी ही शिद्दत से किसी का इंतजार था। डोरबेल बजी और राधिका सब काम छोड़कर गेट की ओर बढ़ रही थी। लिविंग रूम से गुजरते हुए उसने टेबल पर रखा तौलिया उठा लिया, जिसे वो पहले ही लेकर आ गई थी। वहां बैठकर भजन सुनती अनुपमा जी खामोशी से सब देखकर मुस्कुराती रहीं। राधिका को इस घर आए 2.5 साल होने को थे। राधिका ने न सिर्फ इस पूरे घर को संभाल लिया था, बल्कि अपनी हर जिम्मेदारी बखूबी निभाई थी। हर कदम पर उसने माधव की पसंद को सही साबित किया था, अपने माता पिता का सर गर्व से ऊंचा किया था, हर मुश्किल में माधव का साथ दिया था। और जिंदगी की आजमाइशों को पार करते हुए उसने न सिर्फ माधव की जिंदगी में एक अलग मुकाम हासिल किया था, बल्कि अनुपमा जी का दिल भी जीत लिया था। रिश्तेदारों में भी उसकी तारीफ ही होती थी, और जब वो अनुपमा जी से पूछती कि इतनी सुंदर सुगढ़ और संस्कारी बहू कहाँ से ढूंढ लाई, तो अपने बेटे की पसंद पर नाज करती उनका सीना गर्व से चौड़ा हो जाता। अर्पिता की शादी के बाद आशुतोष जी भी यहीं रहने लगे थे। शुरू में वो आशुतोष जी के साथ आने से वो खुश नहीं थीं, पर जब बुढ़ापे में बात करने के लिए एक साथी मिल गया तो उनका साथ भी अच्छा लगने लगा। फिर राधिका ने उन्हें कभी शिकायत का मौका नहीं दिया था। जितना सम्मान आशुतोष जी का करती उतना ही मान उन्हें देती, अपने पिता जैसे ही उनका ख्याल रखती। उनकी बेटियों और अपनी बहनों में कोई फर्क नहीं रखा था उसने। बाकी सब ठीक था, बस कविता अब भी उससे जाने किस बात का बैर पाले बैठी थी। पर मजबूरी थी कि ज्यादा कुछ कहती नहीं, और थोड़ा बहुत राधिका बर्दाश्त कर जाती। अनुपमा जी बीते वक्त में कहीं खोसी गई थी, तभी उनके कानों में राधिका की चिंता भरी आवाज़ पड़ी। आप तो पूरे भीग गए, कुछ देर रुक ही गए होते, या जब मौसम खराब देख ही रहे थे तो गाड़ी ही ले गए होते। घर के बाहर खड़ी ही तो थी, पर नहीं, बाइक का मोह आपसे छूटता नहीं। अब देख लीजिए, सर से पांव तक पूरे गीले हैं और ऊपर से जुखाम इतनी पकड़ लेता है आपको, फिर भी आपको कोई परवाह नहीं। अब खड़े खड़े मुझे आंखें बड़ी बड़ी किए क्या देख रहे हैं? पकड़िए इसे और जल्दी से जाकर नहाकर कपड़े बदल लीजिए, निकाल कर रखे हुए हैं मैंने। तब तक मैं आपके लिए कड़क चाय बना देती हूँ, जुखाम नहीं होगा। रात को हल्दी वाला दूध और दे दूंगी। राधिका चिंता में उसे डांट भी रही थी और खुद में बड़बड़ाते हुए सोच भी रही थी कि क्या क्या करना चाहिए ताकि माधव की तबीयत ना खराब हो। माधव राधिका के गुस्से में भी उसकी चिंता, फिक्र और परवाह महसूस कर पा रहा था। यही वजह थी कि लबों पर मन स्मित सजाए वो बड़े ही प्यार से उसे निहार रहा था। अब यहीं खड़े खड़े मुस्कुराते रहेंगे क्या? जाकर कपड़े बदलिए, भीगे कपड़ों में जितनी देर रहेंगे उतनी ज्यादा तबीयत खराब हो जाएगी। राधिका ने उसे मुस्कुराते देखकर फिर से डांट दिया। अब की बार माधव ने अपने मुस्कुराते लबों को समेटा और एक अच्छे शरीफ आज्ञाकारी बच्चे जैसे अपनी मास्टरनी जी का हुक्म मान लिया। वो सीढ़ियों की ओर बढ़ने लगा। नज़र जैसे ही ड्राइंग रूम में बैठी अनुपमा जी पर गई, उन्हें खुद को देखकर मुस्कुराते देखकर बेचारा झेमता हुआ तेजी से वहां से चला गया। राधिका खुद में बड़बड़ाते हुए किचन में चली आई और चाय चढ़ाने लगी। कुछ देर में एक कप उसने अनुपमा जी के सामने रख दिया और ट्रे हाथ में थामे सीढ़ियों की ओर बढ़ गई। ऐसी ही पत्नी की चाहत थी हमें हमारे माधव के लिए, बस आपको पहचानने में धोखा खा गए, जाती हुई राधिका को देखते हुए उन्होंने मन ही मन कहा। फिर मंदिर की ओर देखते हुए हाथ जोड़ दिए, जैसे उन्हें धन्यवाद कर रही हों कि उन्होंने तो माँ होकर भी गलत फैसला किया, पर उन्होंने उनके बेटे को सही जीवनसाथी से मिलाकर उसकी जिंदगी की हर कमी को पूरा कर दिया। राधिका कमरे में पहुंची तब तक माधव नहाकर कपड़े बदल चुका था और अब ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ा अपने बालों को तौलिए से पोंछ रहा था। राधिका ने चुपचाप ट्रे उसके सामने कर दी। माधव ने पहले उस कप को देखा जिसमें से गर्म भाप उठ रही थी और अदरक इलायची तुलसी की सौंधी सौंधी खुशबू उसकी सांसों में घुलने लगी थी। फिर निगाहें जरा घुमाई तो नज़र राधिका पर गई, जो मुंह फुलाए निगाहें फिर खफा खफा सी नजर आ रही थी। क्या हुआ मास्टरनी जी, डांटने में कोई कमी रह गई क्या जो अभी तक आपका मुंह नाराजगी से फुला हुआ है? माधव का ये सवाल सुनकर राधिका ने आंखें चढ़ाते हुए उसे घूरा। माधव हल्के से हंस पड़ा, फिर चाय का कप उठाते हुए बोला, आगे से मौसम खराब होने पर कार ले जाया करूंगा। अब छोड़ भी दीजिए ये नाराजगी, मम्मी के सामने ही इतना डांट दिया आपने मुझे, हंस रही थी वो मुझ पर और आप अब भी नाराजगी की नाराजी हैं। माधव ने एक नज़र राधिका को देखा जो अब काफी हद तक शांत लग रही थी, फिर चाय का कप अपने लबों से लगा लिया। खुशबू की तरह स्वाद में भी चाय लाजवाब थी। एक बात तो है राधिका, चाय आप कमाल की बनाती हैं, ऐसी लाजवाब चाय आपके अलावा कोई नहीं बना सकता। अपनी अब तक की जिंदगी में बहुत लोगों के हाथ की चाय पी है मैंने, पर ऐसा स्वाद, जायका और खुशबू किसी और की चाय में नहीं मिली। जैसे शराबियों को दारू की तलब लगती है, मुझे आपकी चाय की तलब लगती है। माधव तारीफ कर रहा था और राधिका कनखइयों से उसे घूरने में लगी थी। बहुत हो गई तारीफ, अब चाय पीजिए, कहीं ठंडी हो गई तो तारीफ से ही काम चलाना पड़ेगा, और चाय पीकर नीचे आ जाइएगा, राधिका ने तुनकते हुए कहा और मुंह ऐंठती हुई वहां से चली गई। माधव ने बेबसी से सर हिला दिया और अपना ध्यान चाय पर लगा दिया। नीचे पहुंचा तब तक राधिका खुद ही शांत हो गई थी और खाना बना रही थी। माधव अनुपमा जी संग बैठकर बातें करने लगा, पर ध्यान था कि रह रहकर रसोई की ओर ही जा रहा था। बेटा, अब हमें भी खुशखबरी सुना दीजिए। शिखा ब्याह कर अपने घर को हो गई, हमारा तो घर आंगन ही सूना हो गया। अब घर में बच्चे की किलकारियों की आवाज गूंजे तो कुछ रौनक आए। अचानक ही बातों बातों में अनुपमा जी ने ये बात छेड़ दी। रसोई में काम करती राधिका की पलकें ठहर गईं और उनके सामने बैठा माधव भी चौंक गया। माँ, माधव ने कुछ कहना चाहा, पर अनुपमा जी ने उसे मौका ना देते हुए खुद ही गंभीरता से आगे कहना शुरू कर दिया। बेटा, बूढ़े हो गए हैं हम, अब तो शरीर भी साथ छोड़ने लगा है। एक ही इच्छा थी हमारी कि अपने जीते जी अपने सब बच्चों के साथ आपका भी घर बसते देख लें। अब आपको राधिका बहू संग खुश देखते हैं तो मन को संतोष मिलता है कि आपको देर सवेरी सही पर अपने हिस्से की खुशियां मिल गईं और आपकी जिंदगी में भी ऐसी जीवन साथी आ गईं जो हमारे बाद भी आपका ख्याल रखेंगी, तो हमें आपकी चिंता नहीं रहेगी। नाती नातिन देख लिए, उन्हें नानी का प्यार भी दे रहे हैं। अब एक आखिरी इच्छा है कि मरने से पहले आपकी औलाद को अपनी गोद में खिला लें, अपने पोते पोती को दादी का प्यार दे दें, उसके बाद हम आराम से इस दुनिया से जा सकेंगे। इस बुढ़िया की ये एक आखिरी इच्छा और पूरी कर दो। अपनी जगह वो सही थी। उम्र के इस पड़ाव पर शायद हर माँ बाप की यही इच्छा होती है कि जाने से पहले अपने बच्चों के बच्चों को अपनी गोद में खिला लें। अनुपमा जी भी यही चाहती थीं, तो कुछ गलत नहीं कहा था उन्होंने। अनुपमा जी की बातें सुनकर राधिका की पलकें झुक गई थीं। माधव ने एक नज़र राधिका को देखा पर कुछ बोल ना सका, बस हौले से मुस्कुराया जैसे उन्हें आश्वस्त कर रहा हो। रात का वक्त था, माधव पलंग पर बैठा रेस्टोरेंट के लिए खरीदे जाने वाले सामान की लिस्ट चेक कर रहा था। राधिका काम निपटाकर कमरे में आई तो माधव ने उसे बिना देखे ही बिजी अंदाज में कहा, राधिका, घर के लिए जो जो सामान लाना है आप एक लिस्ट बनाकर दे दीजिएगा मुझे। कल मार्केट जाना है रेस्टोरेंट का सामान लाने, तो साथ में ही ले आऊंगा।
जी अच्छा, मैं सुबह बनाकर दे दूंगी। राधिका ने उसे देखा, लब हिले, शायद कुछ कहना चाहते थे पर माधव को व्यस्त देखकर कसमसाते हुए बंद हो गए और वो चुपचाप बालकनी में चली आई। बूंदाबांदी अब भी हो रही थी। राधिका रेलिंग के पास खड़ी हो गई और हथेली बाहर की ओर निकाले उन ठंडी बूंदों को खुद को स्पर्श करते देखकर मुस्कुरा दी, उसकी शीतलता को अपने मन में उतारने लगी। कुछ देर बाद अपना काम खत्म करके माधव भी वहीं चला आया। राधिका, आपको बारिश बहुत पसंद है ना? सबको पसंद होती है, राधिका ने उन छोटी छोटी बूंदों संग खेलते हुए मुस्कुराकर जवाब दिया। माधव ने पीछे से उसकी कमर पर एक बांह लपेटते हुए उसे खुद से सटा लिया और दूसरी हथेली से राधिका की बारिश में भीगती हथेली को थाम लिया। मेरी ख्वाहिश है कि एक बार, बस एक बार, आप और मैं एक साथ बारिश में भीगे। क्या आप मेरी ये ख्वाहिश पूरी करना चाहेंगे? राधिका के कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए माधव ने उसके कान में सरगोशी की। वो ठंडी बूंदे और माधव की मोहब्बत की गर्माहट, राधिका सहर उठी। नहीं, आपकी तबीयत खराब हो जाती है। याद नहीं पिछली बार जिद करके मुझे छत पर लेकर चले गए थे और हमें 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि आपको छींकें आनी शुरू हो गई थीं। उसके बाद एक हफ्ता जुकाम रहा था आपको और 3 दिन बुखार। कितनी परेशान हो गई थी मैं। उन बीती बातों को याद करके जहां माधव मायूस हो गया था, वहीं राधिका परेशान। अजब ही बीमारी थी माधव को, कड़कती ठंड बर्दाश्त कर लेता था पर बारिश से जाने कैसे दुश्मनी थी कि जरा से गीले होने पर ही बीमार पड़ जाता था। कुछ पल खामोशी से गुजरे। राधिका यूं ही माधव की बाहों में सिमटी खड़ी रही, उसकी छुवन को खुद में समेटती रही। फिर उसने कमर पर लिपटी उसकी बाँह को हटाया और उसकी ओर पलटते हुए पैर उचकाकर उसकी गर्दन पर अपनी बाहों को लपेट दिया। माधव ने तुरंत ही उसे सहारा देते हुए उसकी कमर को थाम लिया। दोनों एक दूसरे की निगाहों में झांक रहे थे। माधव जी, मुझे कुछ बताना है आपको। कुछ लम्हे सोचने के बाद राधिका ने अपनी चुप्पी तोड़ी। कहिए। माधव अब भी शांत और गंभीर निगाहों से उसे देख रहा था। राधिका जरा हिचकिचाई, माथे पर बल डालते हुए उसने अपनी निचले लब को दांतों तले दबा लिया। चेहरे पर घबराहट के भावों भराए और उसने कहने के लिए लबों को खोला, पर वो कसमसाकर रह गए। टू बी कंटिन्यूड। ऐसा क्या कहने वाली है राधिका जिसे कहने में वो इतनी घबरा रही है? और जब माधव को वो बात पता चलेगी जो राधिका उससे छुपा रही है, तो उसका कैसा रिएक्शन होगा?